अध्याय सात, सामाजिक परिवर्तन के कारक। सामाजिक परिवर्तन किसी एक ही कारक का परिणाम नहीं है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन विभिन्न कारकों के कारण होता है। वास्तविकता यह है कि सामाजिक परिवर्तन एकाधिक कारकों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन के कई कारक हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के लिए विभिन्न कारकों को उत्तरदायी माना है। कांट ने बौद्धिक कारक को, मार्क्स ने आर्थिक कारक को, मैक्स वेबर ने धर्म को, सोरोकिन ने संस्कृति को तथा ऑक्सबर्न ने सांस्कृतिक पिछड़ेपन को सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार माना है। वास्तविकता यह है कि किसी एक कारक के कारण सामाजिक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि इसके लिए कई कारक जिम्मेवार होते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विभिन्न कारकों के कारण सामाजिक परिवर्तन होता है। इस संबंध में रोज का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन के कई कारक उत्तरदायी नहीं हैं। इस प्रकार पता चलता है कि सामाजिक परिवर्तन के बहुत से कारक उत्तरदायी हैं। ये कारक निम्नलिखित हैं। पहला, सांस्कृतिक कारक। दूसरा, पुरानी शास्त्रीय कारक। तीसरा, प्रौद्योगिक कारक। चौथा, प्राकृतिक कारक। पांचवा, आर्थिक कारक। छठवां, जनसंख्यात्मक कारक। सातवां, मनोवैज्ञानिक कारक। आठवां, वैचारिक कारक। नौवां, राजनीतिक कारक। सांस्कृतिक कारक। सामाजिक परिवर्तन का एक कारक सांस्कृतिक कारक कहा जा सकता है। सांस्कृतिक कारकों के कारण ही सामाजिक परिवर्तन होता है। जैसे जैसे संस्कृति में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे सामाजिक परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। एक सामाजिक प्राणी के रूप में मानव की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करता है। इन प्रयत्नों के दौरान अनेक व्यवस्थाओं का विकास हो जाता है। इन व्यवस्थाओं में धर्म, विज्ञान, प्रथा, परंपरा, कला तथा रीति रिवाज आदि शामिल हैं। जब इन व्यवस्थाओं में किसी कारण से परिवर्तन होता है, तब उसे सांस्कृतिक परिवर्तन कहा जा सकता है। संस्कृति के दो भेद, भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति होते हैं। भौतिक संस्कृति में अभौतिक संस्कृति की तुलना में तीव्र गति से परिवर्तन होता है। प्राचीन काल में ज्यों ज्यों संस्कृति परिवर्तन हुआ, त्यों त्यों समाज में भी परिवर्तन हुआ। आज यातायात एक संपर्क के साधनों में वृद्धि के कारण सामुदायिक जीवन में काफी परिवर्तन हुआ है। विश्व के किसी कोने तक भ्रमण करने के लिए कोई कठिनाई नहीं है। आज भौतिक संस्कृति के क्षेत्र में जितने अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन लाता है, इसी कारण लोगों के विचारों एवं आचरणों में परिवर्तन आने लगा है। आज यातायात साधनों जैसे रेल यात्रा, बस यात्रा आदि के छुआछूत की भावना को बहुत हद तक कम कर दिया है। इसी प्रकार औद्योगिकरण ने संयुक्त परिवार को विघटित कर दिया है। विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों ने धार्मिक विश्वास एवं धार्मिक विचारों में परिवर्तन ला दिया है। इस संबंध में दुर्खीम का कहना है कि समाज को संगठित करने में धर्म का बड़ा हाथ रहा है। उनका कहना है कि प्राय सभी सामाजिक संस्थाओं का जन्म धर्म से हुआ है। यह आवश्यक नहीं कि संस्कृति के दोनों पक्षों में समान गति से परिवर्तन हो। आज समाज के सामने कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिसके कारण प्राचीन सामाजिक व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता महसूस हो रही है। प्राचीन सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए सांस्कृतिक तत्वों एवं सामाजिक संस्थाओं में संशोधन की आवश्यकता है। जब सामाजिक संस्थाओं में संशोधन होगा, तब समस्त सांस्कृतिक जीवन में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। मैक्स वेबर तथा ऑकबर्न आदि समाजशास्त्रियों ने सांस्कृतिक कारक को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक माना है। मैक्स वेबर का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन संस्कृति में परिवर्तन के होने के साथ होते हैं। डाउनसन तथा गेटिस ने भी कहा है कि संस्कृति सामाजिक परिवर्तन को गति और निर्देश देती है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर है। मैकाइवर तथा पेज ने भी कहा है, इसलिए सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक या सभ्यता संबंधी परिवर्तन से भिन्न वस्तु है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक कारकों के कारण सामाजिक परिवर्तन होता है। धर्म, प्रथा, परंपरा, आदर्श, मूल्य आदि ऐसे अनेक सांस्कृतिक तत्व हैं जिनमें परिवर्तन होने से सामाजिक परिवर्तन होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक कारक सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है। दूसरा, प्राणी शास्त्रीय कारक। प्राणी शास्त्रीय कारकों का भी सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान है। प्राणी शास्त्रीय जैविक कारकों से तात्पर्य उन कारकों से है जो किसी व्यक्ति को वंशानुक्रम की प्रक्रिया द्वारा अपने माता पिता से प्राप्त होता है। प्राणी शास्त्रीय कारक जनसंख्या के प्रकार को निर्धारित करते हैं। जनसंख्या की रचना, उसका घटना बढ़ना, वितरण, स्त्री पुरुष की जनसंख्या का अनुपात, व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आना प्राणी शास्त्रीय कारकों के कारण संभव हो पाता है। इन सभी बातों का सामाजिक संगठन और संस्थाओं को परिवर्तन करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अर्थात ये सामाजिक संगठन और संस्था में परिवर्तन करके समाज को परिवर्तित कर देते हैं। किसी समाज के लोगों की जन्म दर एवं मृत्यु दर में परिवर्तन होने का असर भी समाज पर पड़ता है। साथ ही साथ औसत आयु में परिवर्तन होने पर भी सामाजिक परिवर्तन होता है। अगर किसी समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक हो जाती हैं तो वहां बहुपत्नी विवाह प्रथा तथा स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होने से बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन हो जाता है। जब स्त्री और पुरुष किसी समाज में समान संख्या में पाए जाते हैं तब उस समाज में एक विवाह प्रथा का प्रचलन होता है। मानव समाज में जैविक दशाएं, जनसंख्या के गुण, दोष, आकार, वितरण, रचना आदि में दिखाई पड़ता है। जनसंख्या के इन अंगों में परिवर्तन होने से सामाजिक परिवर्तन होता है। जनसंख्या का आकार अधिक बढ़ जाने से निर्धनता बढ़ती है तथा सामाजिक स्वास्थ्य में भी कमी होती है। नगरों में अत्यधिक जनसंख्या बढ़ जाने से सामाजिक संबंधों में ह्रास होता है। जनसंख्या की वृद्धि से सामुदायिक भावना में ह्रास के साथ साथ पारिवारिक नियंत्रण एवं सामाजिक नियंत्रण कम होता है। साथ ही साथ सामाजिक मूल्यों का भी ह्रास होता है। नगरों में जनसंख्या वृद्धि के कारण गंदी बस्तियों का विकास और लोगों का नैतिक एवं पारिवारिक पतन होता है। इस प्रकार पता चलता है कि जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व, जन्म दर एवं मृत्यु दर, स्त्री एवं पुरुषों की संख्या में असमानता तथा जनसंख्या का वितरण आदि ऐसे जैविक कारक या प्राणी शास्त्रीय कारक हैं जो विभिन्न रूपों में समाज में परिवर्तन लाते हैं और इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्राणी शास्त्रीय कारक सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है। प्रौद्योगिक कारक। प्रौद्योगिक कारक सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। आधुनिक युग को प्रौद्योगिक युग कहा जाता है। आज यह मानव जीवन की आवश्यकता बन गई है। मानव जीवन का कोई भी पक्ष आज इससे अछूता नहीं है। इसका कारण है कि आज प्रौद्योगिक का उपयोग मानव जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन की उन्नति के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करता रहेगा। इसलिए सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिक कारक महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी ने सामाजिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया है। इसने उद्योगों में मशीनों के उपयोग द्वारा, संदेश वाहन के साधनों में विकास के द्वारा, नवीन कृषि संबंधी प्रवृत्तियों के विकास के द्वारा तथा यातायात के साधनों में विकास के द्वारा मानव जीवन एवं सामाजिक व्यवस्था दोनों को प्रभावित किया है। उपयुक्त सभी बातों का समाज पर अत्यंत गंभीर प्रभाव पड़ा है। प्रौद्योगिकी के कारण समय का महत्व बढ़ गया है और लोगों का संबंध मात्र औपचारिकता पूरा करने भर को रह गया है। विज्ञान के नित नए आविष्कारों ने मानव जीवन को कृत्रिम बना दिया है। औद्योगिकरण के कारण गांवों एवं कस्बों में लोग नगरों एवं महानगरों में रोजगार की खोज में आते हैं। वे महानगरों की चकाचौंध से प्रभावित होकर धीरे धीरे अपने परिवार को भी अपने पास ले आते हैं, जिससे नगरों एवं महानगरों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है। फलस्वरूप गंदी बस्तियों का विकास होता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां एवं महामारियां फैलती हैं। प्रौद्योगिकी के कारण यातायात के साधनों में वृद्धि होती है, जिससे आज देश एवं विदेश आदि की दूरियां कम हो गई हैं। औद्योगिकी के कारण प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह तथा विवाह विच्छेद आदि को प्रशय मिला है। इतना ही नहीं, इसने पारंपरिक संयुक्त परिवार को विघटित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। औद्योगिकरण के कारण श्रम विभाजन और विशेषीकरण को बढ़ावा देकर लोगों की कुशलता में वृद्धि की है। इसके कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। साथ ही प्रौद्योगिकी ने नगरीकरण, बेकारी, प्रतिबद्धता तथा अपराध आदि को भी बढ़ावा दिया है। इसने युवा वर्गों में नवीन विचारधाराओं को पनपाया है। प्रौद्योगिकी के कारण स्त्रियों की स्थिति में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले स्त्रियां घर की चार दीवारी तक सीमित थी। औद्योगिकरण ने उन्हें भी औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्रदान किया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। साथ ही उनमें आत्मबल बढ़ा है और बहुत हद तक वे पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के काबिल हुई हैं। औद्योगिकरण से सामाजिक आदर्श एवं मूल्य भी परिवर्तित हुए हैं। साथ ही इसने व्यक्तिवादिता, भौतिकवादिता तथा कौड़ी आदर्शवादिता को बढ़ावा दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि औद्योगिकरण ने विभिन्न रूपों में मानव जीवन एवं सामाजिक जीवन को प्रभावित कर सामाजिक परिवर्तन किया है। इनमें से कुछ परिवर्तनों के अच्छे परिणाम भी निकले हैं तो कुछ के बुरे परिणाम भी निकले हैं। यह स्वाभाविक है कि क्योंकि किसी भी परिवर्तन के सिर्फ सकारात्मक परिणाम ही नहीं निकलते, बल्कि नकारात्मक परिणाम भी निकलते हैं। इतना अवश्य है कि परिणाम चाहे जो रहा हो, प्रौद्योगिक कारकों को मानव एवं समाज के जीवन में चौमुखी परिवर्तन किए हैं। विभिन्न विद्वानों ने भी प्रौद्योगिक कारकों के महत्व को स्वीकार किया है तथा इसे सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक बताया है। मैकाइबर तथा पेज ने सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिक कारकों के महत्व को स्वीकार किया है तथा कहा है कि वाष्प इंजनों के आविष्कार से सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में इतने क्रांतिकारी परिवर्तन हुए कि उसकी कल्पना भी कठिन है। इसी तरह ऑगवन ने रेडियो के आविष्कार के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले डेट से परिवर्तनों का उल्लेख किया है। सामाजिक परिवर्तन के संबंध में रॉबर्ट बीरस्ट्रीड ने लिखा है, कारण से परिणाम की गति एक सरल या स्वचालित प्रक्रिया है। कार्ल मार्क्स का भी कथन है कि समस्त सामाजिक रचना औद्योगिकरण पर टिकी हुई है, और यदि कोई भी परिवर्तित प्रौद्योगिक में होता है तो इसका प्रभाव सामाजिक संरचना पर भी पड़ता है। प्रौद्योगिक के कारण हमारे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक तथा राजनीतिक जीवन का कोई भी पक्ष अछूता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि औद्योगिकरण सभी क्षेत्रों में परिवर्तन लाता है। औद्योगिकरण किस प्रकार परिवर्तन लाता है, इस संबंध में ऑकबर्न ने लिखा है, प्रौद्योगिक हमारे पर्यावरण को परिवर्तित करके, जिसमें कि हम अनुकूल करते रहते हैं, हमारे समाज में परिवर्तित करती है। उपयुक्त वर्णनों से पता चलता है कि औद्योगिकरण ने मानव जीवन एवं समाज को विभिन्न रूपों से प्रभावित कर उसमें अनेक परिवर्तनों को अंजाम दिया है। इसने सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों एवं आयामों को प्रभावित किया है। अतः यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक कारक सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। प्राकृतिक या भौगोलिक कारक। प्राकृतिक या भौगोलिक कारक सामाजिक परिवर्तन का एक कारक है। कई बार प्रकृति अपने तरीके से सामाजिक परिवर्तन करती है। कभी कभी गंभीर प्राकृतिक संकट आ जाता है। इन संकटों के फलस्वरूप सामाजिक जीवन में क्रांतिकारक परिवर्तन आ जाते हैं। कभी कभी प्रकृति अपनी ऐसी तांडव लीला करती है कि कल का बसा बसाया सुंदर सा नगर या महानगर आज वीरान देखने को मिलता है। प्राकृतिक कारकों में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, बाढ़, अकाल, हैजा एवं प्लेग जैसी महामारियां आती हैं, जो मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। इससे मनुष्य के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है तथा मानव का जीना दुभर हो जाता है। जहाँ की प्रकृति शांत है, वहाँ के लोग सुख चैन की जिंदगी जीते हैं। हैजा एवं प्लेग आदि महामारियों के कारण लोगों के जीवन और सामाजिक संबंध पर भी आवश्यक प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक प्रकोप का कहर तो इतना जबरदस्त होता है कि भूख से पीड़ित माँ बच्चे को छोड़कर चली जाती है। पति मुट्ठी भर चावल के लिए पत्नी को बेच देता है और रोटी के लिए एक टुकड़े से मनुष्य और कुत्ते में संघर्ष होता है। हर्टिगन और तथा बकुल का कहना है कि जलवायु का परिवर्तन ही सभ्यताओं और संस्कृतियों के उत्थान पतन का एकमात्र कारण है। प्रत्येक मानव समाज की कुछ विशेष भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं। विभिन्न दशाओं का सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इन भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण मैदानी क्षेत्र के लोगों और पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के सामाजिक जीवन में स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है। मैदानी क्षेत्र के लोगों का सामाजिक जीवन अत्यंत जटिल एवं विकसित होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का सामाजिक जीवन सरल और अविकसित होता है। इस प्रकार यह पता चलता है कि भौगोलिक दशाओं के कारण भी सामाजिक परिवर्तन होता है। लेकिन यह कहना कि भौगोलिक दशाएं ही सामाजिक जीवन को प्रभावित करती हैं गलत है। जहां एक और भौगोलिक दशाएं मनुष्य और सामाजिक जीवन को प्रभावित करती हैं, वहीं दूसरी ओर मानव भी भौगोलिक दशाओं को नियंत्रित करता है। प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारक मनुष्य के स्वास्थ्य, खानपान, संस्कृति एवं सभ्यता, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता, फैशन, वस्त्र तथा भोजन आदि को प्रभावित करती है। इतना ही नहीं, इसके कारण समाज का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक संरचना आदि सभी प्रभावित होते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक या भौगोलिक कारक सामाजिक परिवर्तन का एक कारक है, जो विभिन्न रूपों से सामाजिक परिवर्तन लाता है। आर्थिक कारक। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारकों का भी योगदान है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने आर्थिक आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है। इनमें से कार्ल मार्क्स प्रमुख हैं। आर्थिक कारकों के कारण सामाजिक संस्थाएं, व्यवस्थाएं एवं संगठन प्रभावित होते हैं और इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन होता है। यदि मानव के आर्थिक जीवन के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि आरंभिक अवस्था में मानव का जीवन शिकारी का था। उस समय मानव का उद्देश्य केवल पेट भरना था तथा सामाजिक जीवन के नहीं के बराबर था। इस प्रकार चारागाह की अवस्था आई, फिर कृषि की अवस्था। इन दोनों अवस्थाओं में मनुष्य थोड़ा व्यवस्थित हुआ और उसके सामाजिक जीवन का भी विकास हुआ। आज मानव औद्योगिक अवस्था में प्रवेश कर चुका है, इस कारण उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। आज मानव का जीवन अपनी आरंभिक अवस्था से बिल्कुल बदल गया है। आर्थिक कारकों का सामाजिक जीवन पर बहुत असर पड़ता है और इससे सामाजिक परिवर्तन होता है। आर्थिक कारकों के कारण सामाजिक संस्थाएं परिवर्तित हुई हैं। सामाजिक संस्थाओं में परिवार, विवाह एवं सामाजिक स्थितियां आती हैं। आर्थिक कारकों के कारण परिवार का रूप बदल गया है। पहले संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती थी। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण संयुक्त परिवार का विघटन होने लगा है। इतना ही नहीं, परिवार का कार्य सीमित हो गया है और इसको अन्य संस्थाएं करने लगी हैं। आज स्त्रियां भी पुरुषों के साथ औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने लगी हैं। इनसे उनमें आर्थिक स्वतंत्रता आई है। स्त्री और पुरुष के साथ साथ काम करने में उनमें प्रेम भी हो जाता है, फलतः वह प्रेम विवाह कर लेते हैं। इस प्रकार आर्थिक कारकों ने विवाह की संस्था को भी परिवर्तित किया है। आर्थिक कारकों के कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है। अतः यह पता चलता है कि आर्थिक कारकों ने सामाजिक संस्थाओं का परिवर्तित किया है। आर्थिक कारकों ने केवल सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तित किया है, बल्कि धार्मिक संस्थाओं में भी परिवर्तन किया है। विज्ञान की प्रगति एवं आर्थिक उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ मानव पर प्रकृति का प्रभाव कम हो गया है। आज मानव ने प्रकृति पर बहुत हद तक नियंत्रण कर लिया है। इसके कारण धर्म का महत्व दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है। इसी प्रकार आर्थिक कारकों का राजनीतिक संस्थाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। जिन देशों में पूंजीपतियों की संख्या अधिक है, वहां राज्य एवं शासन पर उनका प्रभाव अधिक होता है। श्रमिकों का आर्थिक शोषण शुरू हो जाता है, जिससे उनमें चेतना जागृत होती है और वे संगठित हुए। उनमें संगठित रूप ने कहीं कहीं क्रांति कर अपने हाथों में राजनीतिक सत्ता ले ली। सोवियत रूस इसका उदाहरण कहा जा सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आर्थिक कारकों ने न केवल धार्मिक संस्थाओं को परिवर्तित किया है, बल्कि राजनीतिक संस्थाओं को भी प्रभावित किया है। आर्थिक कारकों का जनसंख्या के शारीरिक और मानसिक लक्षणों पर भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ आर्थिक कारकों के कारण जनसंख्या का आकार भी परिवर्तित होता है। किसी भी समाज में उच्च वर्ग की अपेक्षा निम्न वर्ग में मृत्यु दर अधिक होती है। न केवल मृत्यु दर बल्कि जन्म दर भी अधिक होती है। इससे जनसंख्या का आकार प्रभावित होता है। आर्थिक परिस्थितियों के कारण अपराध भी पनपता है। एक निर्धन व्यक्ति अपराध की ओर अधिक प्रेरित होता है। साथ ही आर्थिक कारकों के कारण औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में वृद्धि हुई, जो अपराध को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुई है। इस प्रकार पता चलता है कि आर्थिक कारकों के कारण अपराध की संख्या में भी वृद्धि हुई है। आर्थिक कारकों के कारण स्थानांतरण भी होता है। जब किसी जगह अकाली या भुखमरी हो जाती है तो लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। इसमें सुधार के लिए वे एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते हैं। इस स्थानांतरण के कारण भी अनेक प्रकार के सामाजिक परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार यह पता चलता है कि आर्थिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है, जो विभिन्न रूपों से समाज में सामाजिक परिवर्तन लाता है। जनसंख्यात्मक कारक सामाजिक परिवर्तन का एक कारक जनसंख्या कारक है। जनसंख्यात्मक कारक भी विभिन्न रूपों में सामाजिक परिवर्तन लाता है। किसी भी समाज में जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, आवास, प्रवास, लिंग अनुपात आदि से ऐसे जनसंख्यात्मक कारक हैं जो समाज एवं सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या का आकार और जनसंख्या का घनत्व घटने बढ़ने से सामाजिक परिवर्तन होता है। अगर किसी देश में जन्म दर अधिक है तथा मृत्यु दर कम है तो वहां जनसंख्या वृद्धि की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि देश में अति जनसंख्या की स्थिति उत्पन्न होती है तो भुखमरी पैदा होती है, करोड़ों व्यक्ति असमय ही काल कवलित हो जाते हैं। इसका प्रभाव सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है। इसके विपरीत यदि जन्म दर घट जाए और मृत्यु दर बढ़ जाए तो समाज में कार्यशील लोगों का अभाव हो जाता है, इससे देश और समाज की आर्थिक दशा बिगड़ेगी। इस प्रकार पता चलता है कि जनसंख्या का आकार और घनत्व एक ऐसा जनसंख्यात्मक कारक है जो सामाजिक परिवर्तन को अंजाम देता है। आप्रवास भी एक ऐसा कारक है जो सामाजिक परिवर्तन को उत्पन्न करता है। यदि किसी देश से दूसरे देश में लोग आकर बस जाएंगे तो उस देश की संस्कृति और सभ्यता, रहन सहन आदि पर इसका प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे बाहर से आकर बसने वाले लोगों की संस्कृति और मूल निवासियों की संस्कृति मिलकर एक मिश्रित संस्कृति को जन्म देती है। इससे व्यवहार का एक नया ढंग उत्पन्न होता है तथा व्यक्तियों की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं भी परिवर्तित होने लगती हैं। इन सभी बातों का प्रभाव व्यक्ति के आचार व्यवहार, नैतिकता तथा चिंतन आदि पर पड़ता है। इस प्रकार आप्रवास सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है। न केवल आप्रवास बल्कि उत्प्रवास भी सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है। यदि किसी देश से लोग दूसरे देश में चल जाते हैं तो जिस देश के लोग जाते हैं वहां की जनसंख्या प्रभावित होती है। उत्प्रवास के कारण थोड़े समय के लिए सही स्त्री पुरुष के अनुपात में भिन्नता होती है। अक्सर पुरुष वर्ग बाहर जाते हैं। अनेक परिवारों में पुरुष के अभाव में पारिवारिक विघटन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार उत्प्रवास भी सामाजिक परिवर्तन लाता है। जनसंख्या संबंधी संरचना जैसे आयु, लिंग, वैवाहिक स्तर आदि भी सामाजिक परिवर्तन को जन्म देते हैं। ये सभी विभिन्न रूपों में सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि जनसंख्या में किसी समाज में वृद्धों की संख्या अधिक रहती है तो वहाँ परंपरागत विचारों का बोलबाला रहता है। इसके विपरीत यदि नए लोगों या कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक रहती है तो वहाँ नवीन विचारों की प्रधानता रहती है। इसी प्रकार जिस समाज में पुरुषों का अनुपात स्त्रियों से बहुत अधिक रहता है तो उस समाज में हर एक क्षेत्र में पुरुषों का बोलबाला रहता है। इसके विपरीत यदि किसी समाज में स्त्रियों की जनसंख्या का अनुपात पुरुषों से अधिक रहता है तो उस समाज में स्त्रियों की प्रधानता रहती है। इस प्रकार यह पता चलता है कि आयु, लिंग तथा वैवाहिक स्तर आदि जनसंख्यात्मक कारक विभिन्न रूपों में सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। अतः जनसंख्यात्मक कारक सामाजिक परिवर्तन का एक कारक कहा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक कारक सामाजिक परिवर्तन का एक मुख्य कारक है। दरअसल मानव समाज मानव के मस्तिष्क की उपज है। सामाजिक परिवर्तन का कारण स्वयं मनुष्य का मनोविज्ञान है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मानव मस्तिष्क में परिवर्तन के कारण सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होते हैं। मानव एक जिज्ञासु एवं विवेकशील प्राणी है। इस प्रवृत्ति के कारण वह नित्य नई खोजों में लगा रहता है। इन खोजों के दौरान मानव ने न जाने कितने आविष्कार किए हैं जिनसे उनके जीवन के ढंग ही बदल दिया है। अपनी इन्हीं खोजों एवं आविष्कारों के बल पर मानव चंद्रमा पर गया। कई देशों की यात्राएं की तथा समुद्र में गहराई तक भी उतरा। दरअसल एक ही प्रकार की स्थिति से मनुष्य उब जाता है, इसलिए वह उसमें हमेशा परिवर्तन जाता रहता है। इसी परिवर्तन की चाह ने मानव की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति में भी बहुत परिवर्तन ला दिए हैं और उनका स्थान नवीन खोजों ने ले लिया है। मानव अपनी प्रथाओं, परंपराओं एवं रूढ़ियों आदि में भी बराबर परिवर्तन करता रहता है। समयानुसार इसमें परिवर्तन की आवश्यकता भी पड़ती है। वास्तविकता यह है कि परिवर्तन से ही जीवन जीवित रहता है, स्थिरता जीवन के विरुद्ध है। यही कारण है कि समयानुसार जब परिवर्तन नहीं होता है तो बड़ी बड़ी क्रांतियां होती हैं, युद्ध होते हैं एवं महामारी फैलती है। इसलिए परिवर्तन समय की मांग कही जा सकती है। अगर किसी चीज़ में परिवर्तन होता रहता है तो वह हमेशा नवीन ही लगता है और लोग उसे बहुत चाव से अपनाते हैं। जब परिवर्तन नहीं होता है तो व्यक्तियों में असंतोष, मानसिक तनाव फैलता है जो सामाजिक संघर्ष को जन्म देता है। मानसिक तनाव से व्यक्तिगत क्षति तो होती ही है, सामाजिक क्षति भी होती है। यह सामाजिक संबंधों को तोड़ देती है, साथ ही लोगों में निराशा का भाव पैदा करती है, जिसके कारण अपराध, हत्या तथा आत्महत्या जैसी घटनाएं घटती हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक रूप से सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है और इस रूप में सामाजिक परिवर्तन होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक कारक सामाजिक परिवर्तन का एक कारक है। वैचारिक कारक सामाजिक परिवर्तन का एक कारक वैचारिक कारक कहा जा सकता है। विचार एवं आदर्श दोनों ही सामाजिक परिवर्तन के लिए आदर्श कहे जा सकते हैं। वैचारिक कारकों में भी समाज में परिवर्तन आता है। वैचारिक कारकों के कारण समाज की संपूर्ण संरचना ही बदल जाती है। यहूदियों ने अपनी विचारधारा के आधार पर इजराइल राष्ट्र का निर्माण किया। इसी प्रकार वैचारिक कारकों से ही रूस में क्रांति हुई और उसने रूस के संपूर्ण सामाजिक जीवन को बदल दिया। मार्क्स और गांधी ने विचारों ने समाज में बहुत अधिक परिवर्तन ला दिया। उनकी विचारधारा आज भी समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न विचारधाराओं ने समाज में बहुत अधिक परिवर्तन लाया है। आज भी समाज में अनेक विचारधाराएं हैं जो बहुत ही सी कहावतों के रूप में प्रसिद्ध हैं, जैसे ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है, समय ही धन है, धन ही को अर्जित करता है तथा रात्रि में जल्दी सोना और सुबह उठना व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है आदि। इन विचारों के कारण मानव अपने जीवन को उसी अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता है और प्रगति करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वैचारिक कारकों का प्रभाव सामाजिक जीवन पर बहुत पड़ता है। समय समय पर विभिन्न सामाजिक चिंतकों तथा दार्शनिकों ने समाज में अपने विचारों द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाने का काम किया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि समाज सुधारकों ने अपने विचारों द्वारा समाज में अनेकानेक परिवर्तन किए हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि समय समय पर विभिन्न विचारकों एवं समाज सुधारकों के विचारकों ने मानव समाज बहुत कल्याण किया है। अपने विचारों से ना जाने कितने दीनहीन एवं पीड़ित मानवों का कल्याण विचारकों ने लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाकर किया है। वास्तविकता यह है कि समाज सुधारकों एवं विचारकों द्वारा व्यक्त किए गए विचार मानव के मानस पटल पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं और वे उसे अपनाने की प्रेरित होते हैं। इस प्रकार वैचारिक कारकों द्वारा लोगों के विचार में परिवर्तन लाकर एवं अन्य विभिन्न रूपों में भी सामाजिक परिवर्तन किया जाता है। अतः वैचारिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक कहा जा सकता है। राजनीतिक कारक सामाजिक परिवर्तन राजनीतिक कारण से ही होता है। राजनीतिक कारकों को सैनिक कारक भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। विभिन्न क्रांतियां एवं युद्ध राजनीतिक कारणों से ही हुए हैं, उनका इतिहास में जिक्र है। इसलिए यह भी कहा गया है कि इतिहास भूतकालीन राजनीति और राजनीतिक वर्तमान इतिहास है। राजनीतिक कारणों से सत्ता में परिवर्तन होता है। सत्ता में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में भी परिवर्तन होते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक राजनीतिक दल अपना अपना सिद्धांत होता है और सत्ता परिवर्तन के साथ साथ वे उसे लागू करते हैं। इस प्रकार समाज के हर एक क्षेत्र में परिवर्तन होता है। जहाँ तक यह सवाल है कि राजनीतिक कारक और सैनिक कारक एक समान है, तो उनका वर्णन शुरू में ही किया जा चुका है। सैनिक कारक के संबंध में रॉबर्ट बिस्टर्नी ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में लिखा है, कुछ लेखकों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वृद्धों, छुटपुट लड़ाइयों, वंशों, युद्धों, विजय तथा पराजय की कहानी है। वास्तव में इतिहास कुछ ही समय पूर्व तक सैनिक शक्ति के आधार पर लिखा गया था, और इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन में भी सैनिक समाजातीय सिद्धांत विद्वान है। इस प्रकार यह पता चलता है कि इतिहास केवल युद्धों की लड़ाइयों से भरा हुआ नहीं था। एक सेना के विजय से उस समाज में अनेक सामाजिक परिवर्तन आ जाते हैं। समाज की कहानी संघर्ष और युद्ध, विजय और पराजय की कहानी है। सामाजिक परिवर्तन में सैनिक कारक का बहुत महत्व है, लेकिन बियर्स्टिड ने कहना है कि सैनिक सिद्धांत अकेला ही युद्ध के समाजशास्त्र की व्याख्या नहीं कर सकता। सैनिक कारक और राजनीतिक कारक सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसका उदाहरण हमारे देश के संदर्भ में मिलता है। आज़ादी के बाद से भारतीय राजनीति में बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, जिससे सामाजिक परिवर्तन भी हुआ। समय समय पर राजनीति में हस्तांतरण के कारण अनेक सामाजिक परिवर्तन परिलक्षित होते रहे हैं। अतः राजनीतिक कारक सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक कहा जा सकता है।